आपके घोड़े का नाम था यासूफ, बहुत हसीन था। यासूफ कहते हैं शहद की मलका को, शहद की मलका। तो एक छत्ते में, शहद के एक छत्ते में 36,000 का लश्कर होता है शहद की मक्खियों का, उसमें शहद की मलका नुमाया नजर आता है, वो यासूफ नुमाया नजर आता है। तो मुर्तजिल 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 लेबाद फिराद रही सजिल सकब सबहर यासूब याहूब वर्द। ये आलिशान घोड़े को जिन पर आपने सवार फरमाया। मैं आपको एक नमूना बता रहा हूँ सीरत का, कि अल्लाह ने ऐसा प्यार किया कि हर शय जिंदा कर, हर शय। माजी में दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों का पैदाइश का दिन तारीख ऐसे मुताबिक नहीं बन सकता जैसे मेरे नहीं। चंगेज खान दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह भी है, छठी सदी में पैदा हुआ था, छठी सदी में पैदा हुआ 550 के करीब, और ये एक यतीम बच्चा पैदा हो रहा है, बाप जिनके दुनिया से जा चुके हैं, कफील उनके दादा हैं, वो घर में फखर है, और दादा अब्दुल मुत्तलिब बैतुल्ला का पर्दा पकड़ के रो रहा है, तैयार है मेरा बेटा अब्दुल्ला चला गया, अगर आज बेटी हुई तो उसकी निशानी खत्म हो जाएगी, उसको बेटा दे दे तो उसका नाम जिंदा रहे, और उसे क्या खबर कि आज शहनशाह कायनात आ रहे हैं, दादे को क्या खबर। तो अल्लाह ताला ने एक यतीम के लिए मौरखीन कायनात तारीख को ऐसा मुतनब्बी किया कि मैं आपको आपकी पैदाइश की तफसील बताता हूं। 22 अप्रैल 571 ईस्वी, 12 रबीउल अव्वल और आम अल फी, यकम जेठ 628 विक्रम, हमारा जो विक्रम अजीत का जो इंडियन कैलेंडर, और बरोज पीर सुबह होके 4:20 पर आप दुनिया में तशरीफ लाए। 4:20 में क्यों कहता हूं, उस जमाने में तो घड़ी भी थी, ये मेरा इजाफा है 4:20। वैसे एक किताब में भी मैंने पढ़ा, ये इजाफा इसलिए है कि मैंने मक्का मुकरमा में 22 अप्रैल की सुबह सादिक देखी, कब होती है तो छोड़ के है सब कुछ, तो 22 अप्रैल मक्का मुकरमा में सुबह सादिक 4:20 पर होती है। तो इस तरह एक यकीन के आने को महफूज करना, हिंदी कैलेंडर भी बेकार है और इस्लामी कैलेंडर भी बेकार है और रूसी कैलेंडर भी बेकार, मेरे वक्त की मोहब्बत नहीं करता। कहीं सदियों बाद जाकर तीन चीजें इकट्ठी होती हैं, 22 अप्रैल हो, 12 रबीउल अव्वल हो और पीर हो, ये तीन चीजें कहीं 100 साल में जब सदियों में जाकर होती, तो हमारी जमात गई थी जबूती, जैसे अभी हम आपके पास हैं, यहाँ सूडान में इज्तिमा हो रहा है, पहले चाड में था, फिर कैमरून में था, वहां से परसों हम आए। तो जबूती उधर अफ्रीका का मुल्क है, सोमालिया के साथ, यमन के सामने, वहां से हम पहुंचे दुबई, तो वहां मेरा बयान था, मुझे तारीख याद नहीं थी, वहां पहुंचा तो पता चला, याद आया कि आज 12 रबीउल अव्वल है और 22 अप्रैल है और दिन पीर का है। तीन चीजें मेरी याददाश्त में, मैंने जिंदगी में कई दफा इकट्ठी होती देखी, तो वो 22 अप्रैल था, 12 रबीउल अव्वल था और पीर का दिन था। तो कौन इसको याद रखता है। फिर आपकी आमद बड़ी अजीब थी, आपकी दाया लेडी डॉक्टर, उसका नाम था शिफा, शिफा, उनके हाथों कई बच्चे पैदा हुए, लेकिन जब आपकी आमद करीब हुई तो कमरा महक उठा, खुशबू फैली। जैसे जैसे बच्चा बाहर आ रहा था, खुशबू बढ़ रही थी और शिफा की नजर पड़ी है तो बच्चे के जिस्म पर माँ के पेट की आंवल का एक जर्रा नहीं था। माँ के पेट से जब बच्चा आता है तो भरा हुआ होता है, उठाया जाता है, धोया जाता है। आप माँ के पेट से बाहर आए पाक पाकी हो, झूले झुलाए और नाफ बाहर काटी जाती है, आंत और नाफ जुड़ी होती है। जब आप बाहर आए तो आपकी नाफ माँ के पेट के अंदर से कट के आएगी। फिर बच्चा है, लड़का है तो खतना होता है, लेकिन जब आप माँ के पेट से निकले तो आपका खतना माँ के पेट से होके आया। तीन अजायब के साथ आप आए, पाकीज़ा, खुशबूदार, नाक कटी हुई और सपना हुआ। लिहाजा दाई के लिए अजीब मकाम था कि ये कौन बच्चा है, कैसा बच्चा है। तो उन्होंने हाथों में लिया, हैरानों के देखा, मां के पहलू में लेटाया। ये बच्चा 15 मिनट गुजार चुका है, 20 मिनट गुजार चुका। आपने एकदम करवट बदली, ये बच्चा जिसको पैदा हो गए थे 15-20 मिनट में, करवट बदली और पूरे सजदे में चले गए जैसे एक आदमी सजदा करता, पूरा सजदा। मां भी घबरा गई और दाई भी घबरा गई, ये क्या हुआ। और आते ही ऐलान किया कि मेरी उम्मत की जीनत सजदा है, मेरी उम्मत की पहचान नमाज है। वो तो क्या उम्मत ही है जो सजदे से ही मारो। अब मैं लंबा सजदा किया, सर उठाया, पूरी छाती ऐसे उठा, फिर इस हाथ पर टेक लगाया और इस हाथ को ऊपर उठाया, यूं शहादत की उंगली ऐसे ऊपर। यूं करने से सामना फरमाती है पूरा आलम रोशन हो, तो सारी दुनिया सिमट के मेरे सामने आ गई। और फिर उसके बाद आप गिरे और वहीं सीधे होकर पड़ गए जैसे मासूम बच्चों। तो मां की भी हैरत बढ़ चुकी है, दाई की भी बढ़ चुकी है। तो मां ने उठाकर गोद में ले ली, तो देख रही है क्या है, उसने क्या किया है। एकदम यूं लगा घर की छत फट गई और उसमें से एक बादल आया, जैसे हमारे यहां सर्दियों में धुंध पड़ती है, धुंध धुंध पाई वो मॉम जिस बारे में, और पूरे कमरे में फैल गई वो धुंध और कमरे में नजर नहीं आ रहा। और इतनी वो गहरी हो गई कि गोद में बच्चा मां को नजर नहीं आ, उस धुंध में से आवाज आई, तूफू बिही मशारिक अल अर्ज व मगारिबा लियारफू बिस्मिही व नअतिही व सूरतिही। इस बच्चे को सारी कायनात का चक्कर लगवाओ। और जब ये आवाज आ रही थी तो हजरत आमना को लगा कि बच्चा मेरी गोद से निकल चुका है, सच्चा गोद में नहीं, नजर भी नहीं आ रहा और महसूस भी नहीं हो रहा, गोद में नहीं है। और आवाज आई, इस बच्चे को सारी कायनात दिखा दो, फिरा दो, ताकि पूरी कायनात के इंसानों को पता चले कि इसी के पीछे चलेंगे तो अल्लाह मिले और मंजिल मिले, वरना भटकते रहे। फिर आवाज आई, वह आतू वो फुल वो पकड़ दू से आदम के अखलाक हमारे फतशीस और उसकी शीश की मार्फत शजा का नूह और नूह की दरेरी और बहादुरी को और खुल्लत इब्राहिम और इब्राहिम की खुल्लत और दोस्ती को इस्लाम इस्माइल और इस्माइल की कुर्बानी दे الفصاحة صالح وحكمة لوط ورضا إسحاق وبشرى يعقوب. ورسل لوط كي حكمته، صالح كي فصاحته، إسماعيل كي قربانيته، إسحاق كي رضاته، يعقوب كي بشارته، وجمال يوسف اور یوسف کا حسن دو، بشدت موسیٰ اور موسیٰ کا جلال دو، بجہاد یوشع اور یوشع کا جہاد دو، وحب دانیال اور دانیال کی محبت دو، وقلب ایوب ولحن داود اور ایوب کا دل دو، داود کی شیرین میٹھی زبان دو، وقرعت یونس وعصمت یحییٰ وزہد عیسیٰ اطاق محسوب فی اخلاق النبیشین. اور اسے یونس کی اطاعت دو، اور اسے یحییٰ کی عصمت پاک دامنی دو، اسے عیسیٰ کا زہد دو، اور جو کچھ نبیوں کو ملا سب عشق دے. 1,25,000 نبیوں کو جو ملا وہ تو 15 منٹ میں مل گیا، باقی جو ملا اسے کون ناپے کون تولے. اس لیے اللہ نے ایک آیت میں اشارہ کیا، اوحا الى عبده ما اوحا. تو تمہیں نہیں پتا کہ میں نے اپنے نبی کے سینے پر کیا کیا علم کا فیضان کیا. نبیوں کا کوئی استاد نہیں ہوتا، براہ راست اللہ سکھاتا ہے، اللہ کی طرف سے تعلیم ہوتی. اور وہب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پوری دنیا میں آنے والے انبیاء اور انسان ان کو جتنا علم دیا وہ ایک ذرہ ہے، جتنا اپنے حبیب کو دیا وہ ایک صحرا. علم تو بات کی چیز ہے، سارے علم کی انتہا تو اللہ ہے. جو آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لے پیچھے علم کی کیا بات، سارے علم کا منتہا تو اللہ کی پہچان. جو اللہ ہی کو دیکھ لے تو پیچھے اب کیسے بیان کیا جائے اور کیا بیان کیا جائے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه المأوى اذ يخشى السدره ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرى. اچھا ایک مثال دیتا ہوں، یہ جو مقدمہ ہوتا ہے نا مقدمہ، تو اس میں گواہ کے ذمہ ہوتا ہے قسم اٹھانا اور وکیل کے ذمہ ہوتا ہے دلیل دینا. گواہ سے قسم لی جاتی ہے اور وکیل دلائل پیش کرتا ہے. اگر وکیل بھی قسمیں اٹھانے لگ جائے تو جج کو شک پڑ جاتا ہے کہ کوئی چکر. تو وکیل قوت دلائل سے بات بتاتا ہے، گواہ قسم اٹھا. یہ دو الگ کام ہیں، گواہ کے ذمہ ہے قسم اٹھانا، وکیل کے ذمہ ہے دلائل دینا. میں قربان جاؤں، میرا رب اپنے نبی کے لیے گواہ بن کے قسمیں اٹھاتا ہے، وکیل بن کے دلائل دیتا ہے، دونوں ہی کام ہے. والنجم اذا ہوا، یہ گواہ ہے قسم اٹھا رہا. والنجم اذا ہوا، کون بیان کر سکتا ہے سیرت کو؟ دو ہستیاں بیان نہیں ہو سکتی، ایک اللہ ایک اللہ کا رسول. جتنا ہی کوئی بیان کر سکتا. والنجم اذا ہوا، گواہ بن گیا قسم اٹھا رہا. ما ضل صاحبكم وما غوا، وکیل بن گیا دلیل پیش کر رہا. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، گواہ بن گیا. انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، وكيل بن گیا. نون والقلم وما يسطرون، یہ گواہ بن گیا. ما انت بنعمت ربك بمجنون، یہاں وکیل بن گیا، وکالت بھی کرتا ہے گواہ بھی بن گیا. اس کو کون بیان کرے؟ اس کو رب نے بیان کیا. الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وسوف يعطيك ربك فترضى. یہ جو آیت ہے نا یہ آپ کی شان میں سب سے بلند ہے. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. میں تھوڑا پیچھے سے آپ کو بتا دوں ایک اس کا ترجمہ جو سارے مفسرین نے کیا ہے, مجھے قسم ہے روشن دن کی اور سیاہ رات کی تیرے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں, تیرا رب آپ سے ناراض نہیں, آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے, میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اس کے دو ترجمے امام راضی نے نقل کیے ہیں وہ بتاتا ہوں. والضحا, اے میرے حبیب مجھے آپ کے روشن علم کی قسم, واللیل اذا سجا مجھے آپ کی ستاری کی سیاہ چادر کی قسم جس میں آپ اپنی امت کے گناہ گاروں کو چھپا لیتے, ان کے عیب چھپا دیتے, ظاہر نہیں ہونے دیتے. ہمارا کام عیب چھپانا ہے, عیب ڈھونڈنا نہیں ہے, کمیاں نہ دیکھو خوبیاں دیکھو. تیسرا ترجمہ سب سے علی شان ہے اور اگلے مضمون سے بہت جوڑ کھاتا ہے. والضحا, اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم, مجھے تیرے خوبصورت حسین چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم, بھلا میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں, بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ دنیا آنی جانی ہے, آخرت تیرے لیے ہے, تیرا رب تمہیں اتنا دینے والا ہے کہ تو راضی ہو جائے. دیکھو میرے بھائی, اللہ کائنات کے تمام انسان حتیٰ کے انبیاء کہتا ہے مجھے راضی کر, مجھے راضی کر. پوری کائنات, بشر, آدم, نسل, بنا آدم سے عیسیٰ تک مجھے راضی کر, مجھے راضی کر. اور جو کل کائنات سے مطالبہ کرتا ہے مجھے راضی کرو, وہ رب اپنے حبیب سے کہتا ہے میں تمہیں راضی کروں گا, میں تمہیں راضی کروں گا. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. تھوڑا سفر سے منظر بھی بتاؤں, کچھ دن وہی نہیں آئی اللہ کی حکمت, تو قریش کہنے لگے اس کا رب اسے چھوڑ گیا, چھوڑ گیا, چھوڑ گیا, ناراض ہو گیا, ناراض ہو گیا. تو غیروں کی بات ہے تو آدمی سنتے ہی رہتا ہے, اپنوں کی بات چپ جاتی ہے. حضرت خدیجہ نے ایک دفعہ کہہ دیا, یا رسول اللہ, اللہ تو نہیں ناراض ہو گیا؟ بھائی یہ بات لکھے وہی خدیجہ بھی کہہ رہے, بس دل کو لگنے کی دیر تھی کہ جبریل آیا ہے, ہاں پتا کام پتا پسینے پسینے. میں کسی تفسیر میں تو نہیں پڑھا لیکن مجھے تھوڑا سا عربی لغت سے مناسب, تو اس کلام کی ادائیگی کے لیے میں تھوڑی سی مثال دیتا ہوں. جب کسی آدمی کو ایک اچانک بات کا پتہ چلے اس کی طرف منسوب ہو گئی ہے غلط, تو وہ اس کو اس کی صفائی پیش کرنے کے لیے ایک کو جلدی کرتا ہے, کس نے کہا, وہ کدھر ہے, تو وہ پاکستان امبیسی میں بیٹھا ہوا ہے, شہباز صاحب کے پاس بیٹھا ہوا, تو وہ دوڑا ہوا تھا اور پھر اس کے لہجے میں سکون نہیں ہوتا, تیزی ہوتی, میں نہیں کہا, میں نہیں کہا, اللہ کی قسم غلط ہے, جھوٹ ہے, اسے قسم دے دو, میں نے کہاں کہا, کیسے کہا, کب کہا, یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا. بولو تو یہی لہجہ سورت وضحا میں ہے کہ اللہ نے جبریل کو بھگایا, جا جا میرے حبیب کے دل پہ ملا لا گیا, دھو جا کے جلدی دھو, تو جبریل بھاگا جلدی پڑھی, جبریل کو بھی جلدی پڑھی, میرے حبیب کے دل پہ غبار ہے, سبحان کیا عجب کر, تیرے روشن چہرے تیری جا حضور, تیرے لیے تو کائنات بنائی, تجھے چھوڑ دوں گا, خوش پہ ناراض ہو جاؤں, میں نے تو آپ کو اتنا دینا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں. फिर गलत फहमी को दूर करने के लिए पिछले एहसान जुटलाए जाते हैं। फला मौके पर तो मैंने तेरे साथ ये किया, तू मेरे बारे में ये कह रहा है, ये भी होता है ना। अब ये अलम यजीद का यकीन मेरे मेरे महबूब, मैंने तुम्हें यकीनी में ठिकाना दिया, फला मैं आपको छोड़ सकता हूँ। फपाल मन फहा, मैंने देखा आप मेरी तलब में परेशान थे, तो मैंने अपना आप आपके खोल दिया, तो मैं आपके नाराज हो सकता। मैंने आपको देखा तंदरस्ती, तो खदीजा से निकाह करवा के आपकी तंदरस्ती को दूर किया, भला मैं आपसे नाराज हो सकता हूँ। अगली सूरत का मजमून भी जुड़ा हुआ है, अलम नशरह लक सदर, मैंने ही तो आपका सीना खोला, भला मैं नाराज हो सकता हूँ। वबाना अनका विज्रक, मैंने ही आपके बोझ हटाए, भला मैं नाराज हो सकता हूँ। रफअना लक ज़िक्रक, मैंने आपके नाम को बुलंद किया, मैं आपसे नाराज हो सकता। तो जिसको अल्लाह राजी करने के फिक्र में हो, हम राजी ना करें तो फिर बर्बाद हो गए ना। अल्लाह का शुक्र है, सुन्नत ने अपने नबी को कितना तो याद रखा हुआ है कि रबीउल अव्वल के 12 दिन तो याद कर ही देते हैं। अल्लाह का शुक्र, ये भी ना होता तो इतना तो अल्लाह का शुक्र है कि चलो चंद दिन पूरी दुनिया में कोई गहमा गहमी होती है, अगरचे उसमें रस्म और रिवाज ज्यादा हैं, और असल याद तो तब हो कि जिंदगी बदल जाए, एक आदमी झूठ से सच पे आ जाए, हराम से हलाल पे आ जाए, गफलत से बेदारी पे आ जाए, नमाज छोड़ने से नमाज पढ़ने पे आ जाए, ख्यानत करने से दयानत पे आ जाए, रिश्वत से तनख्वाह पे आ जाए, शिद्दत से नरमी पे आ जाए, फिर तो असल रबीउल अव्वल है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है चलो किसी दर्जे में याद दहानी को हो गया। तो अल्लाह जिसको राजी कर रहा है, और फाना कर लेकर अल्लाह का जिक्र पर एक हदीस याद आए, वो भी आपको साथ सुना देते। आपने जब आप जब अल्लाह पाक की बारगाह में पेशी हुई, हाजिरी हुई और मुलाकात हुई, तो आपने अल्लाह से अर्ज किया, अल्लाह इब्राहिम इब्राहिम को कलील बनाया, मूसा को कलीम बनाया, दाऊद को लोहा नरम करके दिया, सुलेमान को हवा ताजे करके दिए, ईसा को मुर्दे जिंदा करके दिए, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है। तो अल्लाह तआला ने कहा अफ़ज़ल मिन ज़ालिका कुल्लु, मेरे महबूब आपको वो दिए है जो किसी को नहीं दिए। क्या अल्लाह ज़िक्रता इल्ला ज़िक्रता मई, क्या मत तक तेरा मेरा नाम इकट्ठा रहेगा, जुदा नहीं हो सकता, संग संग चलेंगे। वशरहतु लक सदर, मैंने आपका सीना खोला, वज़अतु अन्का विज़रा, मैंने आपके बोझ हटाए, और फक्त लगा देखा, मैंने आपके नाम को बुलंद कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, वजह अली लिसान सिदकन फिल आखरीन, जरा मेरा नाम ऊंचा कर दे, अल्लाह ने कर दिया। अल्लाह ने अपने नबी को मांगने से पहले फरमाया, वरफअना लका ज़िक्रक, मैंने आपका नाम बुलंद कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, अजिल तो इलैका रब्बि लितर्दा, या अल्लाह मैं दौड़ के आया हूं कि तू राजी हो जाए, तू राजी हो जाए। और अल्लाह ने अपने नबी से कहा, मैंने आपको इतना देना है कि आप राजी हो जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, वजनो बनी और बनी है अन नाबुद अल अस्नाम, मुझे मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा। और अल्लाह ने अपने हबीब के घर के बारे में कहा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अनकुम रिज्सा अहले बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, ऐ अहले बैत मुहम्मद, हमने आपको हर चीज से पाक कर दिया। आपकी बीवियां कैसी हैं, लसुन्न का अहदन मिन निसा, ऐ मेरे नबी की बीवियों, तुम्हारे जैसी कोई औरत दुनिया में है ही कोई। आपकी औलाद कैसी है, आपने कहा फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। आपके नवासे कैसे हैं, आपने कहा हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। आपके दामाद कैसे हैं, आपने कहा अली तुझे मुबारक हो, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा। तो एक वाहिद हस्ती है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी पूरी जिंदगी महफूज है। बस हमारे जिम्मे चलना है, उस पर हम चलने होंगे। अच्छा, आपकी आमद भी 12 रबीउल अव्वल है और आपका जाना भी 12 रबीउल अव्वल है। पैदाइश भी पीर का दिन है और रवानगी भी पीर का दिन है। उधर 22 अप्रैल है और 12 रबीउल अव्वल है। इधर 7 जून है और 12 रबीउल अव्वल है। उधर 571 ईस्वी है, इधर 633 ईस्वी है। क्योंकि 12 रबीउल अव्वल में दोनों काम हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ा दोनों ये बता दिए, थोड़ा सबू भी बता देता हूँ ताकि दोनों चीजें सामने आ जाए। तो सफर पीर के दिन आपको सर में दर्द शुरू और बुखार ऐशा के घर की बात, तो बुखार बढ़ता गया, दर्द बढ़ता गया और आप नमाजें पढ़ाते रहे, मस्जिद में जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे। आपकी तमन्ना थी बीमारी के दिन आयशा के घर हो, लेकिन जबान से नहीं कह पा रहे थे कि नाइंसाफी ना बदल हो, तो आप इशारा करते कल किसके घर मेरी बारी। तो सबको पता है, कहते जी हफ्जा की बारी, कल कहाँ है कभी उनमें सलमा है, कल कहाँ हूं कभी मैमूना है। तो मैमूना के यहां पहुंचे तो सारी औरतों ने मशवरा किया, ये जो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं मैं कल कहा हूं, मैं कल कहा हूं, इससे लगता कि आप आयशा के घर रहना चाहते। तो सारी औरतों ने इकट्ठे होकर कहा या रसूल अल्लाह, आप बीमारी के दिन आयशा के घर गुजार दें, जब आप ठीक हो जाए अपनी बारी चालू कर दें। तब उनका शुक्रिया अदा किया और अली और अब्बास के कंधे पर हाथ रखकर आप पीर के दिन आयशा के घर दाखिल हुए और पीर के दिन अल्लाह के घर पहुंचे। आखिरी हफ्ता आपके जाने में 5 दिन बाकी थे, आपने फरमाया मुझे 7 कुओं के पानी का गुसल कर, तो 7 कुओं से पानी लाएगा गुसल करो। आप मस्जिद में आए, आपने इसे पट्टी बना दी सर में रख, मिंबर पर बैठे, मजमा नमाज के लिए जमा था। फरमाया लोगों एक जमाना गुजारा है तुम्हारे अंदर, किसी का हक मारा हो तो ले लो, किसी पे ज्यादती की हो तो बदला ले लो, किसको थप्पड़ मारा हो, छड़ी मारी हो, मैं हाजिर हूं बदला ले लो, आखरत में मेरे खिलाफ मुकदमा न कर। तो सारे सहाबा रोने लगे, आप उसको कहते रहे, फिर नमाज पढ़ाए, फिर मेंबर पढ़ाए, फिर यही बात पढ़ाए। एक शख्स खड़े हुए, या रसूल अल्लाह आपने मेरे 3 रुपए दिए। आपने कहा किस बात की। एक साहिल आया था, आपसे मांगा था, आपके पास थे नहीं, आपने मुझे कहा तुम दे दो मैं दे दूंगा। फिर आपने हजरत फजल से फरमाया, फजल ये मेरा कर्जा तू दे दे। तो मेरे नबी का हाल तो ये था कि जिस दिन जा रहे थे उस रात को आपके घर में एक छकाम तेल नहीं था कि चराग जल जाए। अंसारी औरत से तेल एक उधार मांगते हैं। जुमरात आई तो आप ईशा की नमाज के लिए यहां तक आए और फिर रश खा के लिए उठे, ईशा हो गई ताकि इंतजार, फिर इतना हो गया फिर उठे ईशा हो गई ताकि आपका इंतजार, फिर आप ऐसे होने लगे फिर उठे ईशा हो गई ताकि आपका इंतजार। अच्छा, अबू बकर से कहो मेरी जगह नमाज पढ़े। अबू बकर पीछे खड़े थे, उमर आगे खड़े थे, तो लोगों ने कहा नमाज ही पढ़ा नहीं, उन्होंने उमर पढ़ी कर अल्लाह आवाज पड़ी उमर की और मैं जोर से पढ़ा, उमर को पीछे कर अबू बकर को आगे कर, मेरे अल्लाह का फरमान है मेरे मुसल्ले पर अबू बकर के सिवा को नहीं। तो नमाज तोड़वाई गई और अबू बकर को आदि किया। जो एक इमा पांच अर्था पांच इसवा पांच पंद्रह एक सौ फिर इसवा सत्रह सत्रह नंबर बुजुर्गों ने पढ़ाई। हफ्ते के दिन आप आए और जोर की नमाज अबू बकर पढ़े। आप यहां से निकले सहारे पर, अबू बकर की नजर पड़ी तो ऐसे की शहर आपने इशारा किया तो खड़े हो गए तो आपके बराबर बैठकर आपने जोर की चाह कर अदा फरमाई। ये आपकी आखिरी थी मुलाकात अपनी उम्मत के साथ। आप अंदर तशरीफ ले गए, मस्जिद में नहीं आए। पीर की सुबह नमाज खड़ी थी, अपने दरवाजा खोल के देखा तो नमाज हो रही थी। हजरत फरमाते हैं दरवाजा खुला तो हम सब नमाज में ही आपको देखने लगे। करीब था कि हम नमाज ही छोड़ देते तो आपने दरवाजा बंद कर दिया। इशराक के बाद आपने अपनी बीवियों को बुलाया, उनसे मुलाकात की, उनको रुख्सत किया। फिर फातिमा को बुलाया, उनके कान में कहा मैं आज जा रहा हूं। तो रोने लगी, रो नहीं, सबसे पहले तेरी मेरी मुलाकात। 6 माह बाद वो भी चली गई उनके पास, सिर्फ 24 साल की उम्र। फिर आपने अली को बुलाया, उनको अपनी गोली में लिया, उनकी कमर पे हाथ फेरते रहे, फिर उनको रवाना किया। फिर सबसे आखिर में हसन हुसैन को उनको ऐसे हाथों में लिया, फिर उनका सर चूमते रहे और आंखों में आंसू आ गए। एक जहर से तड़प रहा है, एक का सर मेरे पे चढ़ा हुआ और मेरा नबी देख रहा है और आंसुओं से रो रहा है। हाथ नहीं उठाए, दुआ नहीं की, खबर दे दी कि कुत्ता है, देख रहा हूं काला चिट्ठा मेरी औलाद का खून पी रहा है। शिमर को बर्फ थी, फुल गहरी जिसमें काला चिट्ठा। जब सारा रुख्सत हो गया तो जिबरील आ गए, तैयार सुगंध मौत का फरिश्ता बाहर खड़ा है, अंदर आने की जगह चल रही है। तुम्हारा कोई मौत अंदर है, अस्सलाम वालेकुम या रसूल। और अर्ज थी, मैंने आज तक कभी किसी को सलाम नहीं किया, आप पहले हैं जिनको सलाम पूछा, आइंदा भी किसी को नहीं करूंगा। कहने लगे आप पहली हस्ती हैं, अल्लाह ने फरमाया था पूछ के अंदर जाना, बिन पूछे ना जाना। मैं ये क्या करता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह पासपोर्ट है, मोहम्मद रसूलुल्लाह वीजा है। पासपोर्ट के बगैर वीजा नहीं लगता और वीजे के बगैर मुल्क में दाखिला नहीं हो सकता। जन्नत के दाखिले के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह पासपोर्ट है, मोहम्मद रसूलुल्लाह वीजा है। दोनों काम करके मरे तो रास्ता मिल जाए, वरना तो सरहद पर रोक लेंगे, वीजा दिखाओ वीजा दिखाओ। वो दरबार है जहां मौत भी पूछ के आ रही। फिर कहने गया रसूल अल्लाह ताला ने फरमाया था आना चाहे तो ले आना, रहना चाहे तो छोड़ के आ। बाबा ने फरमाया अच्छा मैं इजाजत दे दूं तो फिर मेरी जान निकाल लोगी। निकाल लू फिर आपने जिब्रील को देखा, आंखों से फिर ही कह रहा है जाऊं खैर जाऊं। जिब्रील ने अर्ज किया अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक है, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक है। आसमान पर तैयारी है, आखिरी फैसला आपका। अरे एक बात आप कर दे, अगर ना की होती तो आज हम भी बंदक मंजिल होती। आपने फरमाया अच्छा तो जाओ अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करो, फिर जाओ फिर मैं जाऊँ। तो जिब्रील वापस से जवाब लाया कि अल्लाह कह रहे हैं आपके बाद आपकी उम्मत के साथ दूंगा, अल्लाह कर रहा है और मेरा सीना ठंडा और मेरी आंखें ठंडी। इस पर जिब्रील भी गमगीन होकर कहने लगे या रसूल अल्लाह अगर आपने जाने का फैसला किया है तो मेरा भी दुनिया में आज आखिरी दिन है, आज के बाद मैं भी कभी लौट के नहीं आऊंगा। फिर आपने मलकुल मौत को इजाजत दी چند لمحوں میں دو باتیں کہیں. آج کی مجلس میں یہ دو باتیں لے کے چلے جائیں تو بہت بڑے فائدے کا سودا ہے. آپ نے کہا السلام و ما ملکت ایمانکم, اے میری امت ایک میرے بعد نماز نہیں چھوڑنا اور اس غریبوں سے اچھا سلوک. سارا دین دو چیزیں ہیں, ایک عبادت ہے ایک اخلاق. سارا دین کا خلاصہ دو باتیں, حقوق اللہ ہے حقوق العباد. حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ ہے, حقوق العباد میں اللہ کے بندوں کے سامنے بچھ جانا یہ سب سے اعلیٰ ہے. تو آپ نے سارا قرآن 30 سپارے قرآن اور 10 لاکھ حدیثوں کو دو لفظوں میں بیان کیا, اللہ سے جڑو نماز ہے, اللہ کے بندوں سے جڑو حسن سلوک اور تواضع. کیونکہ غریب زیادہ پستا ہے پٹتا ہے ذلیل ہوتا ہے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا. دیکھو ملازم نوکر غلام نوکرانیاں ملازمیں جو گھر میں کام کرتی ہیں, رحم کرنا رحم کرنا رحم کرنا. سال کے اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو کہتا گاڑی لگ گئی, ڈرائیور کے ہاتھ لگ جائے تو اگلی پچھلی اس کی برابر ہو جائے, بیگم کے اپنے ہاتھ سے پیالی ٹوٹ جائے تو کہتی وہ پیالی ٹوٹ گئی, نوکرانی کے ہاتھ سے ٹوٹ جائے تو اگلے پچھلے کھاتے پورے کرتی. تو میرے نبی نے سارا دین دو جملوں میں رکھا, ایک نماز میں چھوڑنا, ایک امت کے غریبوں پر رحم کرنا. تو یہ دو باتیں ہیں آج سے ہماری اس محفل میں اگر پوری ہو جائیں, ایک ہم سے نماز پڑھنا چھوڑ, ایک ہمارے اخلاق اچھے, صرف نوکروں کے ساتھ نہ ہو, ماں باپ جہاں ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہی ہو, بیوی بچے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہی ہو. لیکن نبی کا فرمان ہے سب سے بہترین مسلمانوں کی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے, اور لیکن نبی نے بیویوں سے فرمایا کہ میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کیسا خامن کو سجدہ کرتا. اولاد ہے تو آپ نے کہا اکرم اولاد, اپنی اولاد کو عزت دو تو تمہیں عزت دیں گے, انہیں ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ سے چلاؤ گے تو بڑے ہو کر باقی ہو جائیں گے. صحابہ آپ بدو فرما رہے تھے اور صحابہ آپ کے گرے ہوئے پانی کو کیوں لے کر منہ پر اور ہاتھوں پہ مار, تو آپ نے وضو سے فارغ ہو کر فرمایا ما یحملکم علی ھذا, یہ کیوں کر رہے, ما حملکم علی ھذا, یہ کیوں کر رہے. قال حب اللہ ورسول, کہ اللہ اس رسول کی محبت میں کر رہے, اللہ اس رسول کی محبت کی یہ نشانی نہیں ہے. من فرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ, جو یہ چاہے کہ اللہ رسول سے میں پیار کروں اور اللہ اس رسول بھی مجھ سے پیار کرے, فَلْيَسْتَقِ الْحَدِيثَ إِلَّا حَدَّثَ, تو زندگی میں جھوٹ نہ بولے ہمیشہ سچ بولے. عشق رسول کی نشانی آئے فَلْيَوَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُمِنْ, جب امانت رکھی جائے تو ادا کرے. وَلْيَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ يُجَادِرُهُ, اور پڑوسی کوئی بھی ہو ہندو سکھ عیسائی مسلم اپنا پرایا اس کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہ تین کام کرنے والا اللہ رسول کا عاشق. اخلاق, نماز تو پھر بھی کچھ نہ کچھ موجود ہے, اخلاق تو زیرو ہو چکی, زیرو. بیوی کا غصہ چڑھ گیا اس کے دل کو پارا پارا کر کے رکھتے ہیں, بیوی کو غصہ چڑھ گیا مقامل کو بے عزت کر کے رکھتے, بچوں کا غصہ چڑھ گیا مار مار ان کی بھلائی کر دیں, بھائی پہ غصہ چڑھ گیا بائی کاٹ کر دیں. درگزر معاف کر دیں, سہجا پیچھے, میرے نبی کے عالی اخلاق. اور آپ نے فرمایا ایمان کا کمال اچھے اخلاق میں, جو یہ چاہے کہ میرا ایمان کامل ہو جائے تو کیا کرے, اپنے اخلاق اچھے. आपने कहा जिसके अखलाक अच्छे होंगे मैं जन्नतुल फिरदौस में घर लेकर दूं। अबू हुरैरा ने पूछा या रसूल अल्लाह अच्छे अखलाक क्या होते हैं? आपने कहा जो तोड़े उससे जोड़ो, जो न दे उसको दो, जो ज्यादती करो उससे माफ करो। उसको अच्छे अखलाक करना, सलाम करने वाले को तो हर कोई सलाम करो, बल्कि आपने फरमाया तो पूर्ण मोमिन हो, पागल ना बनना, पागल ना बनना। हम भाई पागल बनने का क्या मतलब है? कहा तुम यूं कहते फिरो जो अच्छा करेगा अच्छा करेंगे, जो बुरा करेगा बुरा करेंगे, ये पागलपन है। तुम यूं कहो जो बुरा करेगा हम फिर भी अच्छा करेंगे। तो भाइयों बहनों आज के इस मुबारक मजलिस से दो बातें ले, एक नमाज एक अच्छे अखलाक। अच्छे अखलाक बहुत से मुझे अल्सर का दर्द चल रहा है, अब मैं थक गया हूँ बोलते बोलते, तो लेकिन बहुत खुशी हो रही है सूडान में इतने अपने देश के लोगों को देखकर, इतने बहन भाइयों को देखकर बहुत खुशी हो रही है, बहुत हौसला हो रहा है। मैंने चाड में भी इकट्ठा किया था, यहाँ तो आप लोग पहले से इकट्ठे थे, मुझे आपने बुलाया, मैंने चाड में भी पाकिस्तानियों को इकट्ठा किया, कैमरून में नहीं कोई यहाँ गए, यहाँ का इतना बड़ा मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है। तो दो चीजें हैं आज की महफिल मेरे नबी की तालीमात का खुदा था, अखलाक अच्छी, और सारे अखलाक को जमा करूं तो एक बात ये हदीस आपको पहले सुना। और माफ कहने के यार सुन लो कोई अमल तो बताएं मैं जन्नत में चले जाऊ, साल का अमल ना हो बहुत बड़ी बात तुम कुछ पहनना होगा ये सिर आगा मन ये सरा होगा, बाकी अल्लाह जिसके लिए आसान करे आसान है। तो सर ये सदा फिर मकसूद हुआ नमाज रमदान पतल चल पड़ी रमदान के रूल से और हज नमाज पढ़ सरकार से रोजाना हज कर पूरी वादा फिर कहा तीन शीता अम्बा तो कभी अब्बा दे जन्न। अब तुम्हें जन्नत का दरवाजा बताऊ क्या असो मुजुन रोजा ढाल है और सदफा फर्ज है ज़कात देने वाला सफी भी नहीं होता और बकील भी नहीं होता, ज़कात देने वाला सफी भी नहीं होता और बकील भी नहीं होता, जैसे जिसकी कंपार्टमेंट आ जाए तो फेल भी नहीं होता पास भी नहीं होता, तो बीच में लटका जिसकी कंपार्टमेंट आ जाए न पास है न फेल है, ज़कात देने वाला न सफी है न बकील है बीच में, हाँ जकात से बढ़कर देगा फिर वो सखियों में आ जाए, और सखी से अल्लाह को बड़ी मोहब्बत और बकील से अल्लाह को बड़ी नफरत है। बकील एक टांग पे खड़ो के गलत है उल्टे लटक के चिल्ले काटे तो भी अल्लाह के यहां महबूब नहीं, और सखी आदमी अल्लाह का महबूब तरीन बन जाते हैं, सहावत अल्लाह को पसंद है। सदका करना क्या मतलब चौथे देवे तफा का कुछ मिलना रात के अंधेरों में नमाज कायम कर तो फरमाया अना उम्रियों का बिहार से अम्र। अब जो मैंने एक सारे तस्करा बताऊं वो उमूर देगी और इसका सुतून बताऊं वह धीरव देगी, उसकी चोटी बताऊं वह सेना नहीं है और इसकी बुलंदी बताऊं। अब इन अब इन अल्फाज को आप दोबारा सुने अला उम्र का बिहार से अम्र इस सारे दीन का सिरा बताऊं वो अमूर देगी, पूरे दीन का सुतून बताऊं वह धीरवत देगी, पूरे दीन की बुलंदी बताऊं वह सना में ही, पूरे दीन की ऊंचाई बताऊं मुझे क्या क्या। तो मुझे देखिए अपने जबान बाहर निकाली कुफ पर लेसान जबान काबू में रख ये पूरे दिन का सिरा है, पूरे दिन का सुतून है, पूरे दिन की बुलंदी है, पूरे दिन की ऊंचाई है, पूरे दिन की इंतहा है। जिस मर्द औरत की जबान काबू में है, पूरी दुनिया की इबलीस उसे गुमराह नहीं कर सकते। जिस मर्द औरत की जबान आजाद है, जुनैद बगदादियों का लश्कर भी उसे हिदायत नहीं दे सकता। जबान पे काबू, खासतौर पर माँ बाप के सामने, खासतौर पर बीवी के सामने, और बीवी खासतौर पर खान के सामने, बच्चों के बच्चों पर सख्ती ना करो, कॉन्शियन करो, कॉन्शियन करो, मोहब्बत से उठाओ, समझा बुझा के उठाओ। तंबीह जरूरी है, तौहीन हराम है। तौहीन तो जानवर की भी करोगे तो हमारा घोड़ा था सफेद उपरा, बचपन में जब घोड़े थे मैंने वाल साल रखा था, तुम्हारा कोशवान होता था चाचा गांव में, तो घोड़ा थोड़ी सी अड़ी कर खूबसूरत घोड़ा, खूबसूरत घोड़ा, तो उसको जब छोटी मारता था ना तो ऐसे फिर नहीं चलता बिल्कुल। मैं आपको वल्ला आंखों देखा सुना रहा हूं, आंखों देखा, तो अपनी पगड़ी उतारता और उसके पाँव में रखता करता, अल्लाह ना मैं हूं तो तोड़ पाओ, फिर वो चल पड़ता। ये मैंने आंखों से देखा, आंखों से, इन आंखों से। तुम्हारे घर की बात, कोचवान घर का घोड़ा घर, तो पकड़ी दिखा चलो हूं तो तोड़ पाओ, फिर वो चल पड़ता। तो तौहीन तो जानवर भी नहीं बर्दाश्त करे, बीवी कैसे बर्दाश्त करे, खाने कैसे बर्दाश्त करे, बच्चे कैसे बर्दाश्त करे, भाई कैसे बर्दाश्त करे। मौके पे मत रोको, मौके पे मत रोको, एक दूसरे की तारीफ करो, अच्छाइयों की तारीफ करो, कमियों पे पर्दे डालो। एक पीर साहब अपने मुरीद के पास खाना खाने गए, तो खाना बड़ा अच्छा था, तो उन्होंने कहा अपनी बेगम को बुलाओ मैं मिलना चाहता हूँ। तो आगे कहने गए बेटी मैंने आप
मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल।
Welcome to QuranRecites.com, where there are lectures of his renowned Islamic scholars, Nasheed in English, Arabic and in Urdu, Quranic recitation with translation, Islamic
videos and... Mera ghaflat mein dooba dil badal de.